नमस्कार भारत, 18 जून मंगलवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी का अदालत में निधन, तुर्की ने बताई हत्या। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त।
माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बातचीत के बाद हम सब ये स्ट्राइक विड्रॉ कर रहे हैं और जल्द से जल्द हम अपनी काम पे लौट जाना चाहते हैं।
और क्या मुजफ्फरपुर में दिमागी बुखार के लिए लीची है जिम्मेदार?
अगर लीची खाने से होता तो सिर्फ ये कुपोषित बच्चों में ही क्यों हो रहा है? क्या लीची वही लोग खाते हैं जो अच्छे खासे घर के हैं, खाते पीते लोग हैं, वो भी खाते हैं?
होगी क्रिकेट विश्व कप की भी खबर, लेकिन सबसे पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सर्वप्रिया सांगवान से। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी की काहिरा की एक अदालत में सुनवाई के दौरान मौत हो गई। 2012 में उनके राष्ट्रपति बनने के एक साल के बाद मिस्र की सेना ने उनका तख्ता पलट कर दिया था और वे तब से जेल में थे। मिस्र के सरकारी टीवी चैनल का कहना है कि मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। मुस्लिम ब्रदरहुड ने इसे हत्या बताते हुए मुर्सी के जनाजे में शामिल होने के लिए लोगों से अपील की है। अमेरिका का कहना है कि वो मध्य पूर्व क्षेत्र में लगभग 1,000 अतिरिक्त सैनिक टुकड़ियां भेजेगा। राष्ट्रपति दफ्तर के एक बयान में कहा गया है कि ये तैनाती हवा, पानी और जमीन पर खतरे से निपटने के लिए रक्षात्मक उद्देश्य के लिए की जा रही है। ये फैसला आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। पिछले हफ्ते ओमान की खाड़ी में तेल टैंकरों पर हुए हमलों के पीछे अमेरिका ने ईरान का हाथ बताया था। ईरान हमलों में किसी भी तरह की भागीदारी से इनकार कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रमुख डेविड बेसली ने चेतावनी दी है कि एजेंसी यमन में खाद्य सहायता को निलंबित करना शुरू कर देगी क्योंकि खाने की सप्लाई को कहीं और भेजा जा रहा है। डेविड बेसली ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि उनकी एजेंसी हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही। फिलहाल हम हर महीने 1 करोड़ से अधिक लोगों को खिला रहे हैं, लेकिन विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रमुख के रूप में मैं आपको ये आश्वासन नहीं दे सकता कि सारी सहायता उन लोगों तक पहुंच पा रही है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमें स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति नहीं है और क्योंकि लाभ के उद्देश्य से ये सहायता कहीं और ही भेजी जा रही है। समस्या बता रहे थे संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रमुख डेविड बेसली। ट्रंप सरकार का कहना है कि अमेरिका मध्य अमेरिकी देशों को दी जाने वाली सहायता रोकना चाहता है जब तक वे देश अमेरिकी सीमा पर पहुंचने वाले प्रवासियों की संख्या को कम करने की कोशिश नहीं करते। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक संसद ने ग्वाटेमाला, होंडुरास और अल सल्वाडोर के लिए पिछले कुछ सालों से जो करोड़ों डॉलर की सहायता को मंजूरी दी थी उसे निलंबित किया जाएगा। योजना का विरोध करने वाले सांसदों ने कहा कि गरीबी और अपराध से जूझ रहे देशों के लिए सहायता में कटौती करना क्रूर है। उन्होंने कहा कि वित्तीय सहायता कम करने से अमेरिका में प्रवासियों की संख्या और बढ़ने की संभावना है और संसद में इसे इस फैसले का कड़ा विरोध होगा। फ्लोरिडा में पिछले साल पार्कलैंड हाई स्कूल गोलीबारी में जीवित बचे एक लड़के ने मशहूर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था, लेकिन 2 साल पहले उन्होंने ऑनलाइन और फोन मैसेज में नस्लवादी टिप्पणियां की थी जिसके चलते उन्हें हार्वर्ड ने दाखिला देने से इनकार कर दिया है। काइल काशुव अब 18 साल के हैं और उन्होंने कहा है कि टिप्पणी करने के वक्त वे और उनके दोस्त सिर्फ 16 साल के बच्चे थे जो अपरिपक्व और बेवकूफ़ी भरी टिप्पणी कर रहे थे। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि शायद हार्वर्ड को ये विश्वास नहीं कि कोई बदल भी सकता है और आगे बढ़ सकता है। पार्कलैंड हाई स्कूल गोलीबारी में 17 लोग मारे गए थे। पाकिस्तान को उस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब मनीला स्थित एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB ने 3.4 अरब डॉलर की मदद पाकिस्तान को देने की बात से इनकार किया। इससे पहले पाकिस्तानी सरकार ने कहा था कि उसे ADB से 3.4 अरब डॉलर का बजट सपोर्ट मिलेगा। शनिवार को सरकार के 2 सीनियर अधिकारियों ने घोषणा की थी कि ADB 3.4 अरब डॉलर पाकिस्तान को बजट सपोर्ट के रूप में देगा। बास्केटबॉल की मशहूर NBA चैंपियनशिप पहली बार अमेरिका के अलावा किसी देश की टीम ने जीती है और वो है कनाडा के टोरंटो रैपर्स। उनका स्वागत करने के लिए कनाडा के टोरंटो शहर में भारी भीड़ देखने को मिली। BBC समाचार।
नमस्कार स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ आप हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन रहे हैं। अरब क्रांति के बाद 2012 में हुए चुनाव में जीत दर्ज कर राष्ट्रपति बनने वाले मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी का अदालत में निधन हो गया है। वो 67 वर्ष के थे। एक साल तक राष्ट्रपति रहने के बाद 2013 में सेना ने उन्हें पद से हटा दिया था। सरकारी टीवी चैनल ने उनकी मौत का कारण दिल का दौरा बताया है, जबकि उनके करीबियों का कहना है कि जानबूझकर उनके स्वास्थ्य की देखभाल नहीं की गई। तुर्की के राष्ट्रपति रेजप तैयब अर्दोगान ने कहा है कि ये तानाशाहों द्वारा की गई हत्या है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए सरप्रिया सांगवान से।
मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी की काहिरा की एक अदालत में सुनवाई के दौरान मौत हो गई। 67 साल के मुस्लिम ब्रदरहुड के पूर्व नेता मुर्सी को एक पिंजरे में कोर्ट में लाया गया था और उन पर जासूसी से जुड़े मामले की सुनवाई होनी थी। 2012 में उनके राष्ट्रपति बनने के एक साल बाद मिस्र की सेना ने उनका तख्ता पलट कर दिया था और वे तब से जेल में थे। गिरफ्तारी के बाद से ही उन्हें अलग जेल में रखा जाता था और उन्हें उनके परिवार और परिजनों से बहुत कम मिलने दिया जाता था। मुस्लिम ब्रदरहुड के प्रवक्ता का कहना है कि मुर्सी को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रखा गया। मुस्लिम ब्रदरहुड ने इसे हत्या बताते हुए मुर्सी के जनाजे में शामिल होने के लिए लोगों से अपील की है। वहीं उनके विरोधी रहे नेशनल सेल्वेशन फ्रंट के नेता खालिद दाऊद ने कहा है कि मुर्सी के साथ जेल में गलत व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा,
My party and many others in Egypt went out against the Muslim Brotherhood on June 30, 2013.
मेरी पार्टी और मिस्र में कई लोग 30 जून 2013 को मुस्लिम ब्रदरहुड के खिलाफ सड़कों पर आए थे, क्योंकि हमें लगता था कि वे देश चलाने में असफल हैं। लेकिन हम वो पार्टी हैं जो कानून के शासन, मानवाधिकार के सम्मान की बात करते हैं, और मुझे लगता है कि मुर्सी को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। इसमें निष्पक्ष केस की सुनवाई और उपचार के अधिकार जैसे मामले शामिल हैं। राजनीतिक मतभेद से इसका कोई लेना देना नहीं है। हम मूलभूत मानवाधिकारों की बात कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि मुर्सी को वो नहीं मिले। ये थे मुर्सी के विरोधी रहे खालिद दाऊद के शब्द। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रेजप तैयब अर्दोगान ने मुर्सी की मौत के लिए राष्ट्रपति अब्दुल्ला फतेह अल सीसी के नेतृत्व को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा, इतिहास उन तानाशाहों को नहीं भूलेगा जिन्होंने उन्हें जेल में डालकर फांसी से डराया और मौत तक पहुंचाया। हमारी नजरों में मुर्सी एक शहीद हैं जिन्होंने अपने विश्वास के कारण अपनी जान गंवा दी। ये थे तुर्की के राष्ट्रपति रेजप तैयब अर्दोगान के शब्द। पूर्व इंजीनियरिंग प्रोफेसर मोहम्मद मुर्सी 2012 में अरब क्रांति के बाद हुए चुनाव में जीते थे, लेकिन एक साल बाद ही जन आंदोलन हुए जिसके बाद सेना ने उन्हें पद से हटा दिया था। पूर्व राष्ट्रपति मुर्सी के बेटे का कहना है कि प्रशासन ने उन्हें परिवार के कब्रिस्तान में उनके पिता के शव को दफनाने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया है।
मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी का अदालत में निधन।
माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बातचीत के बाद हम सब ये स्ट्राइक विड्रॉ कर रहे हैं और जल्द से जल्द हम अपनी काम पे लौट जाना चाहते हैं। इतने विवेचना के बाद हम ये सिद्धांत पे आए हैं कि हम लोग सरकार को थोड़ा समय देना चाहते हैं हमारी मांगों को पूरे करने के लिए। आखिर में हमारी सब साथी जो इस आंदोलन में हमारे साथ थे, इंक्लूडिंग कॉमन पीपल, उन सबको हमारी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद।
पश्चिम बंगाल में एक सप्ताह से जारी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल आखिरकार कल रात समाप्त हो गई। एनआरएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनकी कई मांगों को मान लिया गया। बीते मंगलवार को डॉक्टरों और एक मृतक मरीज के परिजनों के बीच मारपीट के बाद शुरू हुई इस हड़ताल का एम्स और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी समर्थन किया था। मुख्यमंत्री और डॉक्टरों के बीच बातचीत में क्या कुछ तय हुआ है, यही जानने के लिए हमारी सहयोगी भूमिका राय ने कोलकाता में मौजूद स्थानीय पत्रकार पीएम तिवारी से बात की।
हाँ, ममता ने तो कल ही कहा था कि उन्होंने डॉक्टरों की ज्यादातर मांगे मान ली हैं। डॉक्टर अपनी 12 सूत्री मांगों के साथ ममता बनर्जी के साथ बैठक के लिए आए थे और पहली बार ममता बनर्जी ने इजाजत दी कि बैठक की लाइव कवरेज होगी। ये पहला मौका है ऐसा, और ममता भी चाहती थी कि बैठक जल्द खत्म हो क्योंकि हजारों मरीज आ रहे थे दूर दराज से और परेशान हो रहे थे। तो बैठक में जो मुख्य मांगे थी वो ममता ने पहले ही मांग ली थी। पहले ये था कि उनकी सुरक्षा की दिक्कत है, तो इस पे ममता ने एक कमेटी बना दी है जो 2 सप्ताह में रिपोर्ट देगी। और ममता ने आज भी कहा कि हर अस्पताल में सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और एक जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो मरीजों के परिजनों और डॉक्टरों के बीच तालमेल करेगा। यानी डॉक्टर किसी मरीज के मरने की खबर या हालत बिगड़ने की खबर उसके परिजनों को नहीं देंगे, ये काम जनसंपर्क अधिकारी करेंगे और वो 3 शिफ्ट में 3 लोग हर अस्पताल में रहेंगे। इसके अलावा ममता ने और एक बात कही कि इमरजेंसी वार्ड में एक मरीज के साथ सिर्फ उसके 2 लोग ही जा सकते हैं, ये देखना होगा, इस पे अंकुश लगाना होगा। फिर ममता शाम को जो डॉक्टर मारपीट में घायल हुआ था उसको देखने गई। ये एक मुख्य मांग थी आंदोलनकारियों की।
अभी तक कहाँ पे रुकावट थी जो इतना ये लंबा खिंच गया ये मामला?
हाँ, ये पिछले मंगलवार से ये शुरू हुआ था मामला और ये बीच में उसके बाद आन बान शान की लड़ाई हो गई थी। ममता ने भी एक अपना ईगो का सवाल बना लिया था कि मैं नहीं जाऊंगी वहां और मैं बात नहीं करूंगी। ममता ने उसके बाद बीजेपी पर भी आरोप लगाया था उकसाने का, उनके निशाने पर बीजेपी प्रमुख अमित शाह से लेकर और स्थानीय नेता भी थे कि ये लोग आंदोलन, बाहरी लोग आंदोलन भड़का रहे हैं। लेकिन उसके बाद ममता ने फिर अपना सुर नरम किया। अब ये मुद्दा आखिर तक पहुंच गया था। हड़ताली डॉक्टर भी अब देख रहे थे कि इसके बाद कोई चारा नहीं है, आंदोलन खत्म करना होगा, क्योंकि आम लोगों का गुस्सा भी बढ़ रहा था और दूसरी ओर सरकार ने कहा था कि सारी मांगे मान ली हैं, तो उनके सामने भी कोई दूसरा उपाय नहीं था।
ममता बनर्जी की छवि पर इसका कितना असर पड़ा है वहां पर?
हाँ, इसका तो असर पड़ा है क्योंकि विपक्षी दल भी इस मामले को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने लोग मारे जा रहे हैं। अपुष्ट खबरों के मुताबिक 50 से ज्यादा मरीज इलाज के अभाव में मारे जा चुके हैं 1 सप्ताह के दौरान। तो उसके बाद ही ममता ने भी अपना सुर नरम किया।
पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त, अधिक जानकारी दे रहे थे पीएम तिवारी। बढ़ते हैं आगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश से आने वाले जेपी नड्डा को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष अमित शाह के गृहमंत्री बनने के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि अध्यक्ष पद की कमान किसी और के हाथों में सौंपी जा सकती है। नड्डा को संघ का भी करीबी माना जाता है, उनको कार्यकारी अध्यक्ष चुनने की क्या वजह रही? हमारे सहयोगी भूमिका राय ने हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कुमार से यही पूछा।
कार्यकारी अध्यक्ष का हम ये मान के चलते हैं कि अभी विधानसभा चुनाव होने हैं और जैसा पहले भी कहा जा रहा था कि तब तक अमित शाह बने रहेंगे, लेकिन बहुत सारे पार्टी के ऐसे काम होते हैं कि गृहमंत्री और पार्टी का अध्यक्ष दोनों काम इस तरह से नहीं हो पाते, तो इसलिए ऐसा माना जा रहा था कि ऐसा पद का सृजन जरूर किया जाएगा पार्टी में और किया भी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगले अध्यक्ष भी काफी हद तक ये साफ सा ही है कि नड्डा ही होंगे।
लेकिन क्या नड्डा को चुने जाने की कोई खास वजह देखते हैं आप?
अमित शाह नरेंद्र मोदी टीम में अहम सदस्य माने जाते रहे हैं नड्डा पहले से। एक तो स्ट्रेटेजी बनाने में बड़े माहिर हैं और निश्चित तौर पर संगठनात्मक तौर पर तो उनकी भूमिका और उनका जो कामकाज करने का तरीका है वो तो है ही है। और अभी आपने ये भी देखा यूपी जैसा, जिस रास्ते से अमित शाह आए थे बरास्ता उत्तर प्रदेश, वही रास्ता जेपी नड्डा के लिए भी अख्तियार किया गया था और नड्डा उस पर बखूबी उतरे भी खड़े, तो ये बनता था मेरे हिसाब से।
और नड्डा को संघ का भी करीबी माना जाता है, क्या आप ये भी एक बड़ा और अहम कारण देखते हैं?
जी बिल्कुल, दोनों ही बातें हैं। एक तो मोदी शाह के बहुत नजदीक होना और दूसरा संघ के भी उस तरह के संपर्क में रहना, दोनों चीजें हैं।
नड्डा के आगे किस तरह की चुनौतियां होंगी, किस तरीके की मुश्किलें होंगी, आप कुछ देखते हैं इस तरीके से?
अभी एकदम से तो उनके आगे बहुत चुनौतियां नहीं दिखती है, क्योंकि अभी जो विधानसभा के चुनाव होने हैं इस साल जो महाराष्ट्र में, हरियाणा आदि राज्यों में, उसमें तो जाहिर है अमित शाह आगे रहेंगे और वो उनके सहयोगी बनके उनके एकदम से साथ रहेंगे। चुनौतियां उतनी ज्यादा एकदम से तो नहीं है, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि बहुत सारी चुनौतियां आगे होंगी उनके साथ।
क्या एक ये संभावना देखते हैं कि अमित शाह से हमेशा तुलना होती रहेगी?
देखिए, दोनों अमित शाह और नड्डा, दोनों का कामकाज करने का तरीका जितना हमने देखा है वो बिल्कुल अलग है, काफी अलग है। उस तरह से जो एग्रेसिव नहीं है उस हिसाब से नड्डा बिल्कुल शांत रहने वाले एक नेता के तौर पे जाने जाते हैं, चुप रहते हैं, एकदम से रिएक्ट नहीं करते बहुत ज्यादा, नपीतुली बात करते हैं, काम करने में ज्यादा यकीन रखते हैं।
सबसे बड़ी खूबी या जो उनका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो आप क्या देखते हैं?
मुझे लगता है कि वो वक्त के हिसाब से क्या उस वक्त डिसीजन करना है, निर्णय लेना है, उसमें मुझे लगता है कि उनको बड़ी महारत हासिल है। और उसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में वो बतौर कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ से 2010 में प्रेम कुमार धूमल तब चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त ये समझा कि नहीं, मुझे दिल्ली जाना है और दिल्ली में संगठन में काम करना है। कैबिनेट मंत्री का पद कोई वैसे नहीं छोड़ता और उनसे छुड़ाया किसी ने नहीं, उनका खुद का निर्णय था कि नहीं मुझे अब कुछ और करना है। इमिडिएटली उन्होंने दिल्ली के लिए रवाना हो गए, यहाँ मंत्री पद का सारा छोड़ दिया और ऐसे जमे दिल्ली में 2010 के बाद कि आज वो देखिए आप जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, दावा किया जाता है, बीजेपी उसका कार्यकारी अध्यक्ष तक बन गए।
जेपी नड्डा बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, अधिक जानकारी दे रहे थे वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कुमार। रुख करते हैं बिहार का, जहां मुजफ्फरपुर में दिमागी बुखार और एक्यूट इंसेफिलाइटिस सिंड्रोम की वजह से बच्चों की मौत का आंकड़ा 100 के पार जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज का दौरा किया था और आज राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां का दौरा कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच इस दिमागी बुखार के लिए लीची को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मुजफ्फरपुर ऐसी जगह है जहां की लीची देश भर में मशहूर है, लेकिन क्या इस बुखार का कारण भी लीची ही है? सुनिए मुजफ्फरपुर से पीबीसी संवाददाता प्रियंका दुबे की ये रिपोर्ट।
फलों की रानी के तौर पर पहचाने जाने वाली लीची बीते एक पखवाड़े से अचानक वाद विवाद के केंद्र में आ गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम की वजह से अपनी जान गंवा रहे बच्चों की संख्या अब 103 तक पहुंच गई है। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार बच्चों की मौतों के सिलसिले की एक वजह लीची के बीज में मौजूद टॉक्सिक तत्व भी हो सकते हैं। हालांकि वह यह भी जोड़ते हैं कि इस मामले में निश्चित तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस पूरे विवाद का असर मुजफ्फरपुर की शान माने जाने वाली लीची के व्यापारियों और किसानों पर भी पड़ रहा है। लीची से होने वाली कमाई पर पूरी तरह आश्रित मुजफ्फरपुर क्षेत्र के किसानों को लगता है कि फसल की बदनामी से उनकी बिक्री पर बुरा असर पड़ेगा। इस मामले में सुनिए बिहार लीची ग्रोवर एसोसिएशन के बच्चा प्रसाद सिंह को।
अगर लीची खाने से होता तो सिर्फ या कुपोषित बच्चों में ही क्यों हो रहा है, जो इनका माल न्यूट्रिशन जिन बच्चों में है सिर्फ उन्हीं के बच्चों को हो रहा है। क्या लीची वही लोग खाते हैं? लीची तो सारे लोग खाते हैं, जो अच्छे खासे घर के हैं, खाते पीते लोग हैं वो भी खाते हैं, लेकिन इस सारे हो रहे हैं जो फाइनेंशियली बिग फैमिली के हैं उनके बच्चों को बीमारी फैल रही है। तो इसको गुमराह किया जा रहा है कि उसे चूंकि लीची के सीजन में हुआ है।
बिहार के बीचों बीच से बहने वाली गंडक नदी के उत्तरी भाग में लीची का उत्पादन होता है। यहाँ गर्मियों के 15 दिनों के भीतर होने वाली लीची की 2.5 लाख टन की फसल समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, वैशाली और मुजफ्फरपुर जिलों को मिलाकर कुल 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में उगाई जाती है। हर साल 15 दिनों में ही अनुमानित 80 से 85 करोड़ का व्यवसाय देने वाली लीची पर मुजफ्फरपुर के 50,000 से भी ज्यादा किसान परिवार आश्रित हैं। ऐसे ही एक किसान भोला झा को लगता है कि लीची को बदनाम करने के पीछे फलों के राजा आम के व्यापारियों की लॉबी का हाथ है।
झूठ झूठ का मैंगो लॉबी का आदमी इसको हल्ला करता है, समझ गया ना? मैंगो लॉबी जो चेन्नई और हैदराबाद वगैरह का मैंगो होता है, मैंगो लॉबी का आम इसलिए करता है कि उसका 10 रुपए 12 रुपए किलो मैंगो बिकता है, समझे? अब मेरा लीची 250-300 रुपए किलो बिकता है।
मुजफ्फरपुर स्थित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर विशाल नाथ अपने संस्थान में हुए शोध का हवाला देते हुए बताते हैं कि कारण कई हो सकते हैं, लेकिन इंसेफलाइटिस से हो रही बच्चों की मौतों की मूल वजह सीधे सीधे लीची को नहीं ठहराया जा सकता।
मेरे को तो ऐसा प्रतीत होता है कि अगर इसी तरीके का 2-4 साल और रह गया तो मुजफ्फरपुर जो लीची के लिए माना जाता था यहाँ से कोई लीची नहीं लेगा, एंड द फार्मर्स विल बी अगेन गोइंग फॉर अ काइंड ऑफ डिप्रेशन। जो आर्चर्ड लगा लिया है आइदर टू अप्रूट इट और गो फॉर एनी अदर डायरेक्शन।
एंसेफलाइटिस से लगातार मर रहे बच्चों और एक बदनाम हो रहे फल के बीच मासूमों की जान बचाने के लिए संघर्ष करते मुजफ्फरपुर के आम लोग आज भी लीची को शहर की शान का पर्याय मानते हैं। आज बातचीत में शहर के एक आम निवासी ने मुझसे कहा कि लीची का मतलब मुजफ्फरपुर है और मुजफ्फरपुर का मतलब लीची। प्रियंका दुबे, बीबीसी मुजफ्फरपुर।
श्रोताओं, ये भी खबर बिहार से ही है, जहां आरजेडी की राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने लोकसभा चुनाव से लगभग 4 महीने पहले अपनी सांसद निधि से विकास कार्यों के लिए 15 करोड़ रुपए की अनुशंसा की थी, लेकिन चुनाव परिणाम आने के ठीक बाद उन्होंने करीब 6 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं को रद्द करने का आवेदन भी दे दिया। क्या है ये पूरा मामला, सुनिए नीरज सहाय की इस रिपोर्ट में।
राष्ट्रीय जनता दल की राज्यसभा सांसद डॉक्टर मीसा भारती पाटलिपुत्र लोकसभा चुनाव क्षेत्र से दोबारा चुनाव हारने के बाद इन दिनों अपनी सांसद निधि को लेकर फिर चर्चा में हैं। मीसा भारती 3 साल से राज्यसभा सदस्य हैं, लेकिन इस बीच उन्होंने अपनी सांसद निधि से एक भी योजना लागू करने की सिफारिश नहीं की थी। लोकसभा चुनाव से करीब 4-5 महीने पहले उन्होंने आनन फानन में अपनी सांसद निधि से 15 करोड़ रुपए की योजनाएं लागू करने की अनुशंसा की, लेकिन चुनाव परिणाम आने के ठीक बाद उन्होंने सभी अनुशंसाओं को रद्द करने का आवेदन जिला योजना कार्यालय को दे दिया। उनका यह कदम उनके लिए गले की हड्डी बन गया है तो राज्य के सत्तारूढ़ दलों को बैठे बिठाए उनको घेरने का सुनहरा अवसर दे दिया है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद सांसद मीसा के इस कदम को जनप्रतिनिधि द्वारा उठाया गया अनैतिक कृत्य मानते हैं।
लोकतंत्र में जनता से समर्थन की अपेक्षा कतई बुरी बात नहीं है, लेकिन जनता आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप आपका समर्थन करने के लिए तैयार नहीं हो, फिर योजनाओं के लिए की गई अनुशंसा को वापस लेकर एक प्रतिशोध की दृष्टि से किया गया यह कार्य हम लोग मानते हैं। जनता को सजा देने की कोशिश अगर जनप्रतिनिधि करता है तो ये सर्वथा निंदनीय और भर्त्सना के योग्य।
इस मुद्दे पर राजद कार्यालय में कोई नेता कार्यकर्ता प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं है, लेकिन दबी जुबान से सभी यह कह रहे हैं कि हम विरोधियों से लड़ सकते हैं, जनता जनार्दन से समर्थन के लिए उन्हें समझा सकते हैं, लेकिन जिनके लिए हम यह सब कर रहे हैं उन्हें कौन समझाए। वहीं सांसद के इस कदम को वरिष्ठ पत्रकार एस ए शाद गैर जिम्मेदाराना बताते हैं।
देखिए, राजनीति का अपरिपक्वता से ज्यादा ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है। आप 3 साल तक आपने रिकमेंडेशन नहीं किया, जबकि आपको हर साल 5 करोड़ की रिकमेंडेशन करने चाहिए थे, विकास होने चाहिए थे, विकास को समय पर होना चाहिए।
उधर जिला योजना कार्यालय ने कार्यपालक अभियंता से अनुशंसा के आधार पर विभिन्न योजनाओं के लिए स्वीकृत राशि से संबंधित रिपोर्ट तलब की है। अब देखना है कि सांसद मीसा भारती अपनी कदम पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं और जनता उसका कैसे जवाब देती है। नीरज सहाय, BBC, पटना।
बिहार के बाद अब रुख करते हैं दक्षिण भारत का, जहां चेन्नई में पानी का संकट गहराता जा रहा है। जैसे जैसे पारा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे पानी की सप्लाई करने वाले टैंकरों के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। कई इलाकों में तो टैंकर मालिक 4 गुने दामों में पानी दे रहे हैं। स्थिति इस कदर खराब हो चली है कि रेस्टोरेंट और होटलों में अब पत्तल पर खाना परोसा जा रहा है ताकि पानी का खर्च बचाया जा सके। सुनिए चेन्नई के जल संकट पर इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
वेस्ट मामलम इलाका चेन्नई शहर के बीचों बीच है। यहाँ पर 16 अपार्टमेंट वाली एक इमारत है, जहाँ मार्च के महीने तक हर रोज पानी आता था, लेकिन पानी की किल्लत से लोगों को टैंकर का पानी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जब गर्मी बढ़ती गई और ज़मीन का जल स्तर कम होने लगा तो वाटर टैंकर का पानी महंगा होने लगा। यहाँ तक कि एक 12,000 लीटर का टैंकर जो 1,800 रुपयों में मिलता था, वो कुछ हफ्तों में 4,000 से 5,000 रुपयों तक महंगा हो गया। इस अपार्टमेंट में रहने वाली अनुराधा संतानम ने BBC को बताया।
कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, और तो कभी कभी तो बिल्कुल पानी नहीं है तो नहाना भी मुश्किल हो जाता है, तो कैन लेके खरीदते हैं। जो पीने का पानी होता है ना, कैन, एक कैन 30 रुपीज कॉस्ट होता है, तो हम नहाने के लिए भी वही यूज करते हैं, क्योंकि बिना पानी के तो कुछ नहीं हो सकता।
अनुराधा हर महीने करीब 1,000 रुपये पानी पर खर्च करती थी, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से पानी की किल्लत ऐसी हो गई है कि वो और उनके अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहने वाले पानी पर ही 4 गुना अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं। ये सिर्फ अनुराधा जैसे लोगों का अनुभव नहीं है। चेन्नई के होटल और रेस्टोरेंट में भी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि जहां खाना प्लेट में दिया जाता था, वहां अब लोगों को खाना केले के पत्तों पर दिया जा रहा है। और अब एक नया नियम जारी कर दिया गया है कि होटल और रेस्टोरेंट सारा दिन खुला नहीं रहेगा। चेन्नई होटल एसोसिएशन के महासचिव प्रोफेसर आर राजकुमार कहते हैं, कुछ होटलों में दोपहर के लंच का समय कम कर दिया गया है ताकि हम पानी बचाएं। अगर यही परिस्थिति और दो या तीन हफ्ते चली और पानी की किल्लत और गंभीर हो गई तो होटल और रेस्टोरेंट खुला रखना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये थे प्रोफेसर आर राजकुमार के शब्द। दरअसल चेन्नई में पानी की किल्लत इसलिए शुरू हुई क्योंकि पिछले अक्टूबर से दिसंबर तक रहने वाला उत्तर पूर्व मानसून असफल रहा था। इसकी वजह से चेन्नई के आसपास के जलाशय में पानी कम हो गया। चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से ज़्यादा फायदा नहीं होता है, लेकिन लोगों को ये उम्मीद है कि कुछ ज़ोर से बारिश होने से ज़मीन के जल स्तर में बढ़ोतरी आएगी। इससे शायद पानी के टैंकरों को ज़्यादा पानी मिलेगा और उसका दाम भी कम होगा। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
और अब जान लेते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबार आज क्या कुछ कह रहे हैं। अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सरप्रिया सांगवान।
शाहिद, एक खबर है जो सभी अखबारों में छपी है कि दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग में सोमवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें एक मेजर की मौत हो गई और तीन जवान और जख्मी हुए हैं। एक आतंकवादी को भी मार गिराया गया है। और इसी बीच पुलवामा के अरिहल गांव में सोमवार को आर्मी की गाड़ी पर IED ब्लास्ट के जरिए हमला हुआ। हालांकि इसमें सिर्फ बड़ा जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, 9 सैनिकों को चोट आई है। एक और बड़ी अजीब सी खबर है इंडियन एक्सप्रेस में कि केरल की एक महिला को कैंसर का इलाज शुरू हुआ लेकिन उन्हें कैंसर था ही नहीं। तो 38 साल के रजनी को फरवरी में जब पता चला कि उनके दाएं स्तन में गांठ है तो बायोप्सी के लिए 2 सैंपल भेजे गए, एक प्राइवेट लैब में, एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में। तो जो प्राइवेट लैब ने उनको बताया कि उन्हें कैंसर है तो उनका इलाज भी शुरू हो गया, कीमोथेरेपी भी शुरू हो गई, लेकिन जब मेडिकल कॉलेज की लैब का नतीजा आया तो उसमें कैंसर नहीं मिला। और फिलहाल उनके सब बाल भी झड़ गए उस कीमोथेरेपी से और साइड इफेक्ट से भी वो उभरने की कोशिश कर रही हैं। और केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने इस मामले में जाँच के आदेश दिए हैं।
यानी लापरवाही का बहुत बड़ा मामला है
जी। और एक रेप का एक झूठा मामला सामने आया है मुंबई में जहाँ पर महिला को गिरफ्तार किया गया है झूठी FIR करने के लिए। तो 34 साल की एक महिला को गिरफ्तार किया है मुंबई पुलिस ने। उन्होंने 4 मई को TV एक्टर करण ओब्रॉय पर रेप का आरोप लगाया था और महिला को आपराधिक साजिश और FIR में झूठी जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
सरप्रिया, एक खबर भी हर जगह है, वो ये कि कल एक सिख समुदाय के एक शख्स को जो है पुलिसकर्मियों ने दिल्ली पुलिस के मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है और उसी पे पंजाब केसरी की हेडिंग है कि मुखर्जी नगर कांड में 2 ASI समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड।
जी हाँ, इसमें पुलिस बर्बरता का ये मामला लोग कह रहे हैं कि उन्होंने 2 सिख आदमियों पर डंडे बरसाए। और इसके अलावा एक और कल 17वां पहला दिन था लोकसभा सत्र का और वहाँ पर जब शपथ ग्रहण चल रहा था सांसदों का तो उसको लेकर पंजाब केसरी में ही एक संपादकीय छपा है कि जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर शपथ लेने आई तो उन्होंने अपना आधिकारिक नाम नहीं उच्चारित किया। और इसको लेकर जो संपादकीय है वो कह रहे हैं कि पहले दिन सदन की गरिमा को धक्का पहुंचा है।
अखबारों की समीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरप्रिया। बढ़ते हैं आगे। कल विश्व कप में टॉन्टन में खेले गए मैच में बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज को बड़ी ही आसानी से 7 विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 322 रनों का लक्ष्य दिया जिसे बांग्लादेश के शाकिबुल हसन की 124 रन की नाबाद शतकीय पारी की बदौलत 41.3 ओवरों में बांग्लादेश ने मैच जीत लिया। अन्य खेल की खबरें सुनते हैं खेल समाचारों में।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं क्रिकेट में विश्व कप की ओर, जहां पर आज 24वां ODI मुकाबला खेला जाएगा और ये मुकाबला अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। दोनों ही टीम के विश्व कप में अब तक हुए मुकाबलों की बात करें तो अफगानिस्तान ने 4 मुकाबलों में मुंह की खाई है, यानी कि 4 मुकाबलों में हार दर्ज की। तो वहीं इंग्लैंड ने 4 मुकाबलों में से 3 मुकाबले अपने नाम किए। पहला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 104 रनों से जीता था तो दूसरा मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ 106 रनों से और वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरा मुकाबला 8 विकेटों से जीता था। और अफगानिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के हाथों हार गई। उस लिहाज से आज का मुकाबला अफगानिस्तान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये मुकाबला मैनचेस्टर में खेला जाएगा और भारतीय समय के अनुसार दोपहर को 3 बजे ये मुकाबला होगा।
चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सर्वप्रिया सांगवान से।
मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी की काहिरा की एक अदालत में सुनवाई के दौरान मौत। अमेरिका का कहना है कि वो मध्य पूर्व क्षेत्र में लगभग 1000 अतिरिक्त सैनिक टुकड़ियां भेजेगा। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रमुख डेविड बेस्ली ने चेतावनी दी है कि यमन में खाद्य सहायता को निलंबित करना शुरू करना होगा क्योंकि खाने की सप्लाई को कहीं और भेजा जा रहा है। ट्रंप सरकार का कहना है कि अमेरिका मध्य अमेरिकी देशों को दी जाने वाली सहायता रोकना चाहता है जब तक ये देश अमेरिकी सीमा पर पहुंचने वाले प्रवासियों की संख्या को कम करने की कोशिश नहीं करते। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने। आपसे अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। तब तक ताज़ा खबरों के लिए आपके साथ है bbchindi.com। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें इजाज़त। नमस्कार।